माने बछड़े के दांत के समान वो बाण, या अलग अलग प्रकार के बाण होते हैं। कोई आगे जाकर के गठिला होता है, कोई यूं जाकर के यूं टेढ़ा होता है, और कोई यूं जाकर यूं टेढ़ा होता है, कोई यूं अर्धचंद्राकार यूं होता है। ऐसे सब तरह के बाण अंगद के ऊपर छोड़े गए, जगह जगह अंगद जो है वो बाणों से बिंद गए। परंतु अंगद किसी प्रकार से घबराए नहीं। जब अंगद के ऊपर इतने बाणों की वर्षा हुई तो सोनिताक्ष ने देखा कि अब मेरे को अब घायल हुए अंगद के ऊपर तलवार चलानी चाहिए, तो उसने तलवार निकाली। क्रुद्ध होकर के जब तलवार निकाली, अंगद ने देखा कि ये तो मुझे मारने के लिए पहले बाण छोड़ता था, अब तलवार लेकर आया है, तो अंगद जी ने उछल करके वो तलवार छीन ली। तलवार छीन करके और अपने हाथ में लेकर उस तलवार को उन्होंने जैसे यज्ञोपवीत होता है ऐसे उसको काटना चालू किया। तलवार को यूं प्रहार किया, यूं दो टुकड़े हो गए और सोनिताक्ष वहीं पर समाप्त हो गया। इस प्रकार से फिर उसके बाद प्रजंग और यूपाक्ष इन दोनों ने देखा कि सोनिताक्ष को और कंपन को इसने मार दिया है। तो सोनिताक्ष के देखो तलवार का यूं घाव किया, अभी मरा नहीं था, अभी मरा नहीं था, वो तो मरणासन्न हुआ। इतने में ही प्रजंग और यूपाक्ष ये दोनों आए, बाली पुत्र के ऊपर टूट गए, गदा लेकर अंगद के ऊपर प्रहार किया। तो सोनिताक्ष को थोड़ा आराम मिल गया और सोनिताक्ष जो है वो भी तैयार हो गया युद्ध के लिए। अब ये तीन बांदर एक साथ इसके ऊपर आए, प्रजंग, यूपाक्ष और सोनिताक्ष, ये तीनों एक के ऊपर प्रहार करने लगे। इनको ये विचार नहीं आया कि हम तीन हैं और ये एक है, परंतु वहां तो युद्ध है भाई, यहां तो मारना है, बस कैसे ही मारो। उसी समय में महेंद्र और द्विविध ने देखा कि अंगद अकेले तीन तीन से लड़ रहे हैं, तो ये दोनों भी टूट पड़े। महेंद्र और द्विविध आ गए और आकर के उस सेना में ऐसे टूट गए, तो तीन तो बांदर इधर हो गए, तीन ही राक्षस ये हो गए। अब इनका बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। प्रजंग के पास में तो तलवार थी और यूपाक्ष के पास में रथ था और बाण थे, और सोनिताक्ष के पास में गदा थी, महेंद्र द्विविध इत्यादियों के पास में तो वृक्ष और शिलाएं थी। बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। इस युद्ध के अंदर प्रजंग था, वो बाली पुत्र के ऊपर तलवार लेकर के टूट पड़ा, और इस समय में अंगद ने भी अश्वकर्ण नाम का वृक्ष उखाड़ करके, जिसकी बहुत मोटा तना, उसको उखाड़ करके चारों तरफ उसने घुमाया। बाहुं चास्य सनिस्त्रंसम आजघान समुष्टिना, और उसने जोर से घुमाया, तो घुमाने पर भाई वो प्रजंग था, वो प्रजंग उस समय में घायल होकर के गिर गया। इतने में ही अंगद जी ने उछल करके उसका गला पकड़ लिया, गला पकड़ करके और उसके मुंह के ऊपर जोर से मुक्की की मारी। मुक्की के मारने से उसका माथा खुल गया, माथा खुलते ही प्रजंग तो वहीं पर पूरा हो गया। प्रजंग चाचा लगता था यूपाक्ष के, इसलिए यूपाक्ष युद्ध भूमि में जोर जोर से रोने लगा। और उसके बाद यूपाक्ष बड़े क्रोध में आकर के रथ में चढ़कर के तलवार लेकर के द्विविध की तरफ दौड़ा। आ तो रहा था ये अंगद की तरफ, लेकिन द्विविध ने बीच में ही ललकार लिया और द्विविध के ऊपर उसने प्रहार किया। द्विविध ने भी वृक्ष लेकर के उसके ऊपर प्रहार किया। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। तो इधर शोणिताक्ष ने देखा कि मेरा भाई यूपाक्ष लड़ रहा है और दिविद नाम का बानर उसके वक्षस्थल पर प्रहार करने वाला है, तब वह गदा लेकर के दिविद के ऊपर प्रहार किया। अब दिविद का दोनों के साथ बड़ा युद्ध हो रहा था। इतने में ही मैंद नाम का जो दिविद का भाई था वो आ गया और वो यूपाक्ष के ऊपर टूट पड़ा। उसने यूपाक्ष के छाती पर जोर से मुक्का मारा और मुक्का मारने से वो मैंद के द्वारा यूपाक्ष वहीं पर पूरा हो गया। बस और दिविद था वो शोणिताक्ष के ऊपर टूट पड़ा, तो अंत में भाई उस शोणिताक्ष को पकड़ के उसके दांत से कान और मुंह सब छील दिया, खाने लगा, उठा के पटक करके और जैसे चटनी बनाते हैं ऐसे उसको जमीन के ऊपर पिस पेश है खूब उसको पीसा और जब वो मर गया तब उसको छोड़ दिया। इस प्रकार से मैंद के द्वारा तो यूपाक्ष मर गया, दिविद के द्वारा शोणिताक्ष मर गया और कंपन और प्रजंग ये अंगद के द्वारा मारे गए। कुंभकर्ण का बेटा था कुंभ, जैसे बाप का नाम वैसे बेटे का नाम भी मिलता जुलता, कुंभकर्ण ये था कुंभ। कुंभकर्ण के दो बेटा थे, एक का नाम कुंभ एक का नाम निकुंभ। तो वो कुंभ आया वो बहुत बलवान था, बलवान बलवान राक्षसों के साथ निकला, बहुत बड़ी सेना, बड़ा तेजस्वी, बड़ा दुष्कर कर्म करने वाला, अपने हाथ में धनुष लिया हुआ और वो आकर के राक्षस बांदरी सेना के ऊपर उसने जहरीले जहरीले बाण बरसाना चालू किया और उनका शरीर टूट टूट होने लगा। तो भाई उस समय में द्विविध को अपने सामने देख करके कुंभ ने कान तक खींच खींच करके वे बाण जोर से बरसाए। उस समय में कुंभ की शोभा हो रही थी ऐसे ही जैसे बरसात के अंदर बादलों में बिजली की शोभा होती है। सोने के से उसने आभूषण पहन रखे थे, अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे, ऐसा लग रहा जैसे कोई महाविशाल त्रिकुटाभ है, त्रिकुट पर्वत हो। मैंद ने देखा कि दिविद के सामने तो कुंभ आया हुआ है, तो वो अकेला समझ करके वो अपने भाई के सामने आया। ये मैंद और दिविद ये दोनों अश्विनी कुमार के बेटा थे, अतएव ये दोनों भाई रहे। पर उसमें मैंद और दिविद में एक बात थी कि दिविद नाम था ना दिविद, ये द्वि और विद इनका दो अलग अलग संबंध विच्छेद करना चाहिए, माने दो तरह की बात बोलने वाला। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, तुम आए तुम्हारी तरफ हाँ तो वो आए तो हाँ तुम्हारी तरफ भी हाँ, दोनों तरफ की हाँ। रामावतार में तो राम जी की तरफ हो गया, कृष्णावतार में जो है वो कृष्ण भगवान से विमुख हो गया, इसलिए ये द्विविध है, दो बात बोलता है। परंतु यहाँ तो ये राम जी के साथ बड़ी निष्ठा से लड़ाई कर रहा है राम जी के पक्ष में। तो मैंद और द्विविध ये दोनों अपने हाथ में शिला ले लेकर के निकुंभ कुंभ के ऊपर प्रहार करते हैं। कुंभ ने उनके द्वारा फेंकी हुई शिलाओं का खंडन कर दिया, बाण के द्वारा उनको तोड़ दिया और फिर कुंभ ने एक बाण लेकर के मैंद के ऊपर प्रहार किया। मैंद के यहां मर्म के अंदर बाण लगे, वो मूर्छित होकर के गिर गया। ये दोनों अंगद के मामा लगते थे मैंद और द्विविध, इसलिए अंगद जी दौड़े दौड़े आए और वो कुंभ के सामने धनुष बाण ले हुए कुंभ के सामने खड़े हो गए और उसके ऊपर पर्वत शिलाओं की बरसात की। कुंभ ने तीन बाणों के द्वारा उसके पर्वत को तोड़ दिया और फिर अंगद के ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। अंगद के शरीर में जगह जगह बाण लग गए परंतु अंगद कंपित नहीं हुआ और उसके सिर के ऊपर पर्वत लाला करके और वृक्ष लाला करके पटकने लगा। पड़ने से पहले ही वो उनका छेदन कर देता था। छेदन करने से राक्षसों की सेना ही मरती थी। उन्होंने देखा कि कोई बात नहीं, कुंभ की मृत्यु नहीं होती है तो क्या हुआ, कुंभ की सेना तो मरती ही है। इस प्रकार से वो उसके ऊपर शस्त्र पटकते गए और वो काटता गया, राक्षस की सेना मरती गई। अंत में कुंभ ने जोर से अंगद के ऊपर एक बाण लगाया, उस बाण से अंगद जो है मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए, शरीर से खून निकलने लगा। कुंभ ने देखा कि संभवतः अंगद मर गया है, अतः कुंभ ने उसको छोड़ दिया और मैंद और दिवित थे ये उसके ऊपर टूट पड़े। इतने में अंगद जी को होश आ गया। होश आने के बाद फिर अंगद जी कुंभ के ऊपर टूट पड़े। इस प्रकार से बंदरों ने जाकर के भगवान से निवेदन किया कि महाराज अंगद को बड़ी व्यथा हो रही है, अंगद की सहायता में कोई पहुंचना चाहिए। वो अंगद वहां उस मोर्चे पर बड़ा हार की तरफ जा रहा है, क्योंकि कुंभ का बल अंगद के बल से ज्यादा पड़ रहा है। राम जी ने जब देखा कि एक अकेले अंगद पर इतनी आफत है, तब उन्होंने और जाम्बवान को, सुसेन को, वेगदर्शी को, इन सबको भेजा। ये सब बानर आए और कुंभकर्ण के पुत्र के सामने खड़े हो गए। उस समय में बहुत घमासान युद्ध होने लगा। तो सुग्रीव जी ने देखा कि अरे एक योद्धा के लिए हमारे इतने योद्धा अटक जाएंगे, इसके सामने तो मैं जाता हूं। तो सुग्रीव जी कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ के सामने आए और उन्होंने एक पर्वत उखाड़ करके, महावृक्ष उखाड़ करके और कुंभ के ऊपर प्रहार किया। कुंभ बहुत विलक्षण जो है योद्धा था, अपने तीखे बाणों से उसने सब पर्वतों को काटा और पर्वत शिखरों को काट करके वृक्षों को काटा। घोरा शतघ्न है और उसने वही कई शतघ्नियां लेकर के सुग्रीव के ऊपर बरसात की गदाओं की। शतघ्नि बताया था एक ऐसी गदा जिसके ऊपर सैकड़ों सैकड़ों लोह के बड़े बड़े खीले लगे रहते हैं, वो लेकर के उस पर प्रहार किए। सुग्रीव जी महाराज उससे व्यथित नहीं हुए और तत्काल सुग्रीव जी खड़े होकर के और जोर से छलांग लगाए। छलांग लगा करके कुंभ का जो रथ था उस रथ को उन्होंने वहीं पर पूरा कर दिया और रथ को पूरा करके उसका धनुष था, धनुष और बाण ये लेकर के सुग्रीव जी ने उसका तोड़ ताड़ के फेंक दिया और कुपित होकर के कुंभ से कहा, वाह कुंभ वाह वाह, तेरे जैसे योद्धाओं से लड़ने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है। अरे कुंभ, तुम कुंभकर्ण के भाई हो, तुम कुंभकर्ण के लड़का हो, इसलिए तुम्हारे में तो ऐसा बल होना ही होगा। प्रह्लाद, बलि, भृत्रासुर, कुबेर, वरुण, इनके समान तुम्हारा बल मालूम देता है। ओहो, तुम एक अकेले कितने बड़े योद्धा निकले हो, तुमने अपने पिता के अनुसार बड़ा भारी पराक्रम दिखाया है। त्वामेव एकम महाबाहुम शूलहस्तम मरिंदमम, तुम्हारे द्वारा ही भाई, अकेले के द्वारा हमारी बादरी सेना में बड़ा भय पैदा हो गया। तुम्हारे सामने तो भाई एक बार देवता आ जाए तो देवता भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकते। जिस प्रकार से जितेंद्रिय व्यक्ति के सामने बीमारियां नहीं रहती, उसी प्रकार से तुम्हारे सामने देवता ठहर नहीं सकते। अब आज मेरा तुम पराक्रम देखो। वरदान के कारण से तुम्हारे चाचा वरदानात पितृव्यस्ते सहते देवदानवान, वरदान के कारण से भाई ये कुंभकर्ण के अपराध विधाता ने सहे थे, देवताओं ने, दानवों ने सहे थे और इंद्रजीत के समान तुम भी बड़े पराक्रमी हो। तुमने वरदान लेकर के बहुत कुछ प्राप्त किया है, परंतु भाई कुंभ अब तुम्हारा ये अंतिम समय आ गया है। अब तुम्हारे युद्ध को जिस प्रकार से शंबरासुर के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था, ऐसे तुम्हारा और हमारा युद्ध होगा। पतिता वीर विहरि वीराश्च त्वयैते भीम विक्रमाः, कितने बड़े बड़े यहाँ पर योद्धा मारे गए। मैं तो भाई उपालंब के भय से, उपालंब भया चैव नासि वीर मया हतः, मैंने उपालंब समझ करके तुमको नहीं मारा कि तुम्हारे जैसे को मैं राजा होकर क्या मारूं। लेकिन भाई अब तो लड़ते लड़ते मैं भी बहुत परिश्रम को प्राप्त हो गया और जो है तू भी खूब परिश्रम कर चुका, अब आओ युद्ध करते हैं। लोग मुझे उपालंब देते कि देखो सुग्रीव ने इतनी देर से लड़ने वाले कुंभ को मारा है, तो मैं भी लड़ाऊं, अब तुम भी लड़ लियो, अब कोई उपालंब नहीं है, अब हम तुमको मारते हैं। सुग्रीव ने ऐसा कहकर के उसका अपमान करते हुए उसकी क्रोधाग्नि को बढ़ाया है और कुंभ ने उस समय उछल करके सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं में ले लिया और दोनों भुजाओं में लेकर दोनों आपस में कुश्ती लड़ने लगे। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई दो आपस में हाथी लड़ते हों। अतीत मदव जिनका मत तो अब पूरा हो गया और अब केवल लड़ना ही बाकी है, ऐसे वो लड़ने लगे। लड़ते लड़ते कुश्ती के अंदर दोनों का शरीर गुंथ गया, पैर से पैर हाथ से हाथ यूं गुंथ गए। खूब जोर जोर से नाद करते हैं और उनके मुख से क्रोध की ज्वाला निकल रही है। इस प्रकार से जब दोनों खूब लड़ने लगे तब भाई कुंभ के सुग्रीव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर के उसको नीचे पटक करके और पहले तो उसके खूब लाते मारी और लात वगैरह मार करके और कुंभ को जब वो घायल हो गया तो उठा करके जोर से उसको फेंका तो समुद्र में जाकर डुबा दिया। जब वो कुंभ समुद्र के अंदर गया तो जोर बहुत बड़ी 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 तरंगें ऊपर आई और वो विंध्याचल और मेरु पर्वत के समान दिखाई दिया। देवताओं ने आज बड़ी प्रसन्नता की, वाह वाह कुंभ मारा गया। इस प्रकार से भाई सुग्रीव की जो मुक्ति थी वज्र के समान कठोर, उससे ये बेचारा मारा गया। तो कुंभ की छाती के अंदर देखो समुद्र में पटकने से क्या हो गया, समुद्र में से उछल के आ गया पट्टा, ये भी कम नहीं था। समुद्र में से उठ करके आया और फिर जो है सुग्रीव ने उसको मुक्की से मारा। इस प्रकार से कुंभ था ये मारा गया। कुंभस्य पतितम रूपम भग्नस्य ऋषि मुष्टिना बभौ रुद्राविपन्नस्य यथा रूपं गवाम पते। उस समय में भाई क्या बताएं कि उसका तेज इतना था, मरे हुए कुंभ के शरीर का भी बड़ा विचित्र तेज था। इस प्रकार से जब वो मारा गया तब भाई पृथ्वी के ऊपर कंपन सा होने लगा। उधर कुंभ का भाई था निकुंभ, निकुंभ को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया है, तब वो सुग्रीव की तरफ दौड़ा दौड़ाया, बड़ा उसको क्रोध आया सुग्रीव पर, ये बांदरों का राजा बना हुआ है, मेरे भाई को मारा है, मैं अब इस बांदर को देखता हूँ। इस प्रकार से वह सुग्रीव के ऊपर टूट पड़ा। एक बहुत विचित्र उसने जो है घोटा लिया और वो घोटा भी कैसा था वो कि दत्त पंचांगुलम शुभम, उसके ऊपर बड़े लोहे के पात थे मजबूत, पांच आंगल का पात दिया गया है, थोड़ा सा खाली फिर पांच अंगुल का पात। बड़ा उसको सजा के रखता था घोटे को, ऐसा उसने बहुत बड़ा एक घोटा लिया और घोटा लेकर के साक्षात यमराज का मानो वो दंड हो, राक्षसों के अंदर बड़ा जो है वो उत्साह बढ़ाने वाला, राक्षसों के भय को दूर करने वाला था और इंद्रध्वज के समान बहुत बड़ा था। निकुंभ उसको लेकर के बाहर आया युद्ध भूमि से और आकर के और खुद अपने कानों में कुंडल पहना हुआ, बढ़िया माला पहनी हुई और बड़े अच्छे आभूषण पहना हुआ, क्रोध में भर करके जोर जोर से चिल्लाता हुआ, कहाँ है वो बानर राज सुग्रीव, कहाँ है वो अपने भाई को मारने वाला, कहाँ है वो मेरे भाई को मारने वाला, मैं निकुंभ सबके बीच में जोर जोर से ललकार रहा हूँ, आओ सुग्रीव तुम यदि अपने पुरुषार्थ को दिखाना चाहते हो तो मेरे सामने दिखाओ। उसकी आवाज को राक्षस और बानर कोई सह नहीं सके। इतने में ही हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी महाराज आकर एकदम उसके सामने खड़े हो गए। खड़े होकर के हनुमान जी ने उसके मुंह के ऊपर जोर से तमाचा मारा है। तमाचा मारते ही अब उसके हाथ में परिग तो था ही, परिग लेकर के हनुमान जी पर डाल दिया। हनुमान जी की छाती में वो घोटा लगा। हनुमान जी यूं चक्कर खाए, चक्कर खा करके और फिर जो है थोड़े से बेहोश हुए। इतने में ही हनुमान जी संभल गए और संभल करके एक मुट्ठी लेकर के और बड़े क्रोध के साथ चिल्ला करके, निकुंभ संभल जाओ, अब इस मुट्ठी को ही तुम हमारा वज्र के समान आयुध समझो। ऐसे बड़े वेगवान होकर जोर से उसके छाती पर वो मुक्का मारा। मुक्का मारते उस छाती में खून था, वो मुंह से और छाती से बाहर आ गया। निकुंभ वहीं पर मर गया। इस प्रकार से भाई, अथ निदति साधिते निकुंभे पवन सुते नरणे बभूव युद्धम दशरथ सुत राक्षसेन्द्र सुन्वो वृषतरमागत रोषयो सुभीमम। इस प्रकार से ये इनका आपस में बड़ा भयंकर घमासान युद्ध हुआ। निकुंभ मर गया और रावण का पुत्र जो मकराक्ष था और दशरथ नंदन श्री राम जी थे, इन दोनों का फिर वहां बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कैसे हुआ? कहते हैं कि निकुंभ और कुंभ जब ये दोनों मारे गए तो परम क्रोधी रावण के मन में बड़ी क्रोध की ज्वाला जगी और वो बार बार मूर्छित होकर के खर के बेटे मकराक्ष को चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, बेटा हमारी सेना तो नष्ट हो गई है, तुम्हारे बाप की सेना को और तुम्हारे बाप को मारने वाला ये राम हम सबको मारना चाहता है, तुम अपने पिता का बदला लेना चाहो तो बेटा मकराक्ष जल्दी जाओ और राम और लक्ष्मण दोनों को तुम मार दो। रावण की बात सुनकर के अपने आप को बड़ा शूरवीर मानने वाला ये मकराक्ष कहा, महाराज मैं बहुत दिनों से सोचता था कि राम और लक्ष्मण को मेरा मारने का अभी समय नहीं आ रहा है, बात क्या है? कि बेटा अब तुम्हारा समय आओ, समय आया तुम जाओ। और दशग्रीव को प्रणाम करके वहां से वो चला और रथ के ऊपर बैठ गया। बड़ा अच्छा उसके लिए रथ लाया गया। रथ में बैठ करके और सबसे मिल करके मकराक्ष वहां से रवाना हुआ। रवाना होकर के राक्षसों का उत्साह बढ़ाते बढ़ाते कहता है, यूयम सर्वे प्रयुध्यध्वम पुरस्तान मम राक्षसा। अरे राक्षसों तुम मेरे साथ में चलो, मैं राम के प्राणों को हर लेता हूँ। राक्षसराज महाराज रावण ने आज मुझे राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा करता था कि कब राम को मारूं, कब लक्ष्मण को मारूं, आज समय मिल गया। और यदि राम और लक्ष्मण मर गए तो अच्छी बात है, सुग्रीव को छोड़ने वाला नहीं जो कि इतने बांदरों को लेकर अकारण ही लंका के अंदर घुसाया है। आज मेरे शूल पातों को देखकर बांदरों के अंदर बड़ा भय मचा दूंगा। जिस प्रकार से सूखे लकड़े अग्नि के अंदर जल जाते हैं, ऐसे मेरी क्रोधाग्नि में आज सबको समाप्त कर दूंगा। ऐसे वो उत्साह की बातें करता करता सेना लेकर के और रवाना होता है। तरह तरह का रूप बनाने वाले क्रूर राक्षस, जिनके बड़े खूंखार आकृतियां हैं, दांत जिनके बाहर आए हुए हैं, पीले पीले उनके नेत्र हैं, हाथी के समान जो मदोन्मत्त होकर चलते हैं, केश जिनके बिखरे हुए हैं, आकृति मात्र से जो डरा देने वाले हैं, ऐसे विशाल काय राक्षस वे साथ साथ में चल रहे हैं। कोई भेरी बजाता है, कोई क्या बजाता है, हजारों की इनकी संख्या है, शब्द ये कर रहे हैं। इसी समय चलते चलते ही वो सारथी के हाथ में जो चाबुक है, वो चाबुक एकदम गिर जाता है। देखो सारथी के हाथ से भी चाबुक गिरता है तो ये अपशकुन माना जाता है, चाबुक गिर गया। चलते चलते अकस्मात ही ध्वजा दे ध्वजा झंडा, वो झंडा भी उससे गिर जाता है। चलते 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 घोड़े भी हैं, ये घोड़े भी एकदम यूं पड़ जाते हैं और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। मकराक्ष ने देखा कि शकुन तो अच्छा नहीं हुआ है, इधर भाई पवन भी अच्छा नहीं बह रहा है, बड़ा कठोर बह रहा है। मकराक्ष ने समझा कि है तो अपशकुन, लेकिन एक तरफ अपशकुन है, एक तरफ मेरे शरीर में ताकत है, मेरी ताकत अपशकुनों से ज्यादा ताकत वाली है, अपशकुनों की हम क्या परवाह करें। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गई, क्या ये अपशकुन मेरे लिए नहीं है, ये अपशकुन तो राम और लक्ष्मण के लिए है। राम और लक्ष्मण आज मेरे हाथ से मरेंगे ना, ये उनके अपशकुन है, मेरे लिए थोड़ा ही है। घन गज महिषांग तुल्य वर्णा समर मुखे स्वसकृत गदा से भिन्ना अहम अहमिति युद्ध कौशलास्ते रजनी चरा परिभ्रमुर्मुहुस्ते। अब मैं लड़ूंगा ऐसे करते करते राक्षस, कोई हाथ में गदा लिया हुआ है तो कोई जो है तलवारें लिया हुआ है, वो राक्षस चले जा रहे हैं, कोई बदल के समान तो कोई हाथी के समान तो कोई भैंसे के समान, काले कलूटे ये राक्षस, ये बिना किसी परवाह के बिना किसी जान के वो सब जो है बांदरी सेना में घुस रहे हैं और लड़ रहे हैं। कदनम कपि सिंहानाम चक्रुस्ते रजनी चरा, उन राक्षसों ने बहुत बड़ा वहां पर बंदरों का नाश करना प्रारंभ किया, क्योंकि उन राक्षसों के पास में बड़े बड़े पाश थे, मुदगर थे, दंड थे, पट्टिस थे, भिंडीपाल थे, शक्तियां थी, तलवार थी, गदाएं थी, शतग्निया थी, तोमर थे, बाणपात किया उन्होंने। बंदरों के पास तो दो शस्त्र के अलावा तीसरी चीज भी तो नहीं, तो भाई उस समय में बंदरों का उन्होंने नाश करना चालू किया। खरपुत्र मकराक्ष के भय से बंदर बिचारे इधर उधर भागने लगे, वे सिंह के समान अट्टहास करते करते राक्षस लोग बंदरों के पीछे पड़ गए, और बंदर कभी इधर भागे कभी उधर भागे। उन भगते हुए बंदरों को देख करके राम जी ने उत्साहित होकर के कहा, बंदरों आप लोग चिंता मत करो, अब मैं स्वयं मकराक्ष के सामने जाता हूँ। भगवान श्री राम मकराक्ष के सामने आ गए। सामने आने पर मकराक्ष बड़ा क्रुद्ध होकर के राम जी से कहने लगा, ओहो ठहरो राम, तुमको ही मारने के लिए मैं आगे आया था, द्वंद्व युद्ध आज तुम्हारा और हमारा होगा, मेरे बाण तेरे खून के बड़े प्यासे हैं। राम तुम बहुत बड़े धर्मात्मा का खिताब लिए हुए हो, बड़े भारी धर्मात्मा कहलाते हो, दंडकारण्य में मेरे पिता को तुमने मार करके कौन सा धर्म किया बताओ, और आज मैं तुमको नहीं मारूंगा तो मेरे द्वारा कौन सा धर्म हो जाएगा, आज तुमको मार करके ही अपने धर्म का पालन करूंगा। यत तदा दंडकारण्य पितरम हतवान मम, मेरे पिता को तुमने मारा तो अपने कर्म में रहता हुआ आज मैं तुम्हारे पर रोष करके तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारे एक एक अंग को काटूंगा। और यन मयासी न दृष्टत्वम, इतने दिन तक आप मेरे को दिखाई नहीं दिए, बच गए सो बच गए, अब बचने वाले नहीं हो, बहुत अच्छा वाराम तुम मेरे सामने आ गए, भूखे सिंह के सामने जैसे हिरण आता है ऐसे मेरे सामने तुम आ गए, आज मेरे बाणों के द्वारा तुम सीधे यमलोक में पहुंचाओगे जाने, यमलोक में जाओगे तो वहां मेरे पिता तुमको मिलेंगे, तो कहना कि हे खर तुम्हारे बेटे ने मैंने तुमको मारा, इसका बदला ले लिया है। और मेरे पिता को बोल देना कि लंका के अंदर इस प्रकार से ये राक्षस मारे गए, लेकिन मकराक्ष है ये मेरे को मारने वाला हुआ, और भी मेरे सगे संबंधी कोई वहां यमराज जी के लोक में मिले तो सबको बताना कि मकराक्ष के बाणों में कैसी शक्ति है, चाहो जिस प्रकार से युद्ध कर सकते हो, चाहे गदा से ले हो, चाहे कुश्ती से ले हो, चाहे बाणों से ले हो, सब प्रकार का मुझे अभ्यास है राम, आज मैं तुमको इस ऋण के रणभूमि में छोड़ने वाला नहीं हूं। मकराक्ष के वचनों को सुनकर के भगवान श्री राम हंसने लगे और कहने लगे कि वाह भाई वाह, तुम राक्षसों को इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तुमको रोज कोई आदमी बैठ करके सुनाता है, तुम आते हो वही बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के जाते हो। केवल मुंह से बोलना है कि मैं मार दूंगा, मैं जीत लूंगा, मैं यमलोक में भेज दूंगा, ये बातें बनाना जानते हो, कुछ करना भी जानते हो। तुम्हारे 14,000 राक्षसों में एक भी ऐसा नहीं था जो मुझे घायल करता। लंका के अंदर इतना कोई तुम्हारे यहाँ बलवान नहीं निकला कि हमारे में से किसी को मारा। मकराक्ष, तेरे बाप के पास में 14,000 सैनिक थे, तेरा बाप भी वहां मेरा कुछ नहीं कर सका, तू मेरा क्या करेगा। लोक में कहते हैं ना कि तेरे बाप की ताकत नहीं है। राम जी ने कहा कि तेरे बाप की ताकत नहीं रही मेरे से लड़ाई करने की, तू क्या लड़ाई करेगा। देख, मैंने दंडकारण्य में बहुत अच्छा काम किया। तुमने कहा ना कि खर को मार करके तुमने कौन से धर्म का पालन किया। सुन, मैंने कौन से धर्म का पालन किया बताऊं? इन गीतों से पूछ और इन श्यालियों से पूछ, जनस्थान में जाकर कौओं से पूछ कि इन्होंने 14,000 राक्षसों का तुम्हारा मांस खा करके पेट भरा कि नहीं भरा। तो मैंने इतने प्राणियों का पेट भरा तो कितना बड़ा पुण्य किया। और वही गीद वहां से उड़ करके तेरा मांस खाने के लिए यहाँ आए हैं। मकराक्ष ने देखा कि ये तो भाई बहुत बात का